हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक ने बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। कपड़े चेंज करने के बाद वो सीधा बेड पर आ गई और छत की ओर देखते हुए सोचों में खो गई। आज फिर उसकी आंखों के सामने सिद्धार्थ खुराना का चेहरा घूम गया था, क्योंकि आज उसने आदित्य राणा को सिद्धार्थ खुराना समझकर ही ट्रीट किया था। उसे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा था कि उसे इस तरह आदित्य पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। किसी और का गुस्सा उसने किसी और पर निकाल दिया था, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने खुद को समझाया और धीरे धीरे गहरी भारी नींद में चली गई। वहीं अनामिका सोच में पड़ गई थी। न जाने अब क्या होगा, अगर झलक ने सुबह दादाजी को सब बता दिया तो दादाजी तो मेरा पार्टी करना ही बंद करवा देंगे। मैंने वैसे भी कितनी बार घूमने फिरने की कोशिश की है, लेकिन दादाजी ने मुझे कभी अकेले जाने नहीं दिया। सिर्फ झलक के साथ इसलिए जाने दिया क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। झलक को किसी तरह समझाना होगा कि वो दादाजी को कुछ न बताए, क्योंकि दादाजी के बाद वही एक है जिसके साथ मुझे बाहर जाने की इजाज़त मिल सकती है। फिर वो सोचकर हल्का सा मुस्कुरा दी। वैसे भी जो लड़की इतने हाई प्रोफाइल लड़कों को पीट सकती है वो क्या नहीं कर सकती। मतलब मेरे साथ साथ मुझे एक बेहतरीन बॉडीगार्ड भी मिल गई है, ये सोचते हुए वो मुस्कुरा दी। वहीं दूसरी ओर रणविजय बालकनी में खड़ा था। काफ़ी रात हो चुकी थी, लेकिन वो लगातार सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहा था। आज जिस तरह से उसने आकांक्षा को किस किया था वो उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे एक बेचैन सी फीलिंग आ रही थी। इससे पहले वो कई बार आकांक्षा के साथ रहा था, लेकिन आज अचानक उसके दिमाग में अनामिका का ख्याल आ गया था। जब से अनामिका बिना कुछ बताए गायब हुई थी, उसे अंदर ही अंदर अजीब सा लग रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि इतने सालों की दोस्ती में उसने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि अनामिका आखिर रहती कहाँ है। शुरू से ही वो अपने घमंड में रहा था। उसके अंदर बचपन से ही सिद्धार्थ को लेकर गुस्सा और नफरत भरी हुई थी, जिसे उसने पूरे कॉलेज में कभी किसी से शेयर नहीं किया सिवाय अनामिका के। अनामिका हर बार उसे तसल्ली देती थी, उसका मनोबल बढ़ाती थी और उसे जिंदगी जीने की अच्छी सलाह देती थी, लेकिन बदले में उसने कभी भी अनामिका के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। कॉलेज के बाद जब काफी महीनों बाद अनामिका का कॉल आया और उसने मदद मांगी, तब वो चौंक गया था। उस वक्त वो खुद सिद्धार्थ की जिंदगी में तबाही मचाने का प्लान बना रहा था। अनामिका का कॉल आने पर उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना अनामिका का इस्तेमाल झलक और सिद्धार्थ के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए किया जाए, क्योंकि जिस वक्त वे लोग पहाड़ी इलाके में गए थे उस वक्त झलक और सिद्धार्थ एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे और इस बात की खबर किसी और को नहीं बल्कि रणविजय को थी, जो वहां नकाबपोश के रूप में मौजूद था। उसका मकसद यही था कि किसी तरह सिद्धार्थ को खत्म किया जाए, लेकिन जैसे जैसे वो झलक के करीब जाता गया वो खुद भी उसकी ओर खिंचता चला गया। ऐसा लगने लगा था जैसे वे झलक को गलत समझ रहे हों। फिलहाल आकांक्षा को किस करने के बाद रणविजय के दिल के जज्बात अचानक बदल गए थे और उसे फिर से अनामिका की याद आ गई थी। उसने एक बार फिर अनामिका को कॉल ट्राई किया और अपने कुछ लोगों को उसके पीछे लगा दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि अनामिका आखिर है कहाँ और अचानक कहाँ गायब हो गई। इतना ही नहीं, उसने अपनी यूनिवर्सिटी में भी अनामिका की डिटेल्स और एड्रेस रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी उसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं थी। दरअसल दादाजी ने पहले ही अनामिका की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उसके सारे रिकॉर्ड्स हटवा दिए थे। ये सब जानकर रणविजय खून का घूंट पीकर रह गया। उसे लगने लगा कि अनामिका उसकी जिंदगी में किसी मिस्ट्री की तरह आई थी और अचानक ऐसे गायब हो गई। उसका इस तरह चले जाना रणविजय को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा था। हालांकि वो अब भी सिद्धार्थ को बर्बाद करने और उसे तड़पाने के लिए नए नए प्लान बना रहा था, लेकिन अनामिका का इस तरह गायब हो जाना वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना भी बेचैनी में लगातार शराब पीता जा रहा था। इस वक्त वो कोई और नहीं बल्कि अपने ही अपार्टमेंट में मौजूद था। वो अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला रहा करता था। उसके अंदर अलग अलग तरह के जज्बात उमड़कर बाहर आ रहे थे, अपने आप उसकी आंखें भर आई थीं। उसे लगने लगा था कि काश झलक एक बार फिर से उसकी जिंदगी में लौट आए तो वो इस बार उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा और जितना हो सकेगा उसके करीब रहने की कोशिश करेगा। कितनी ही बार उसने अक्षरा के नशे में झलक को याद किया था। झलक का बेपरवाह तरीके से उसके सामने सो जाना, उसके कपड़ों का अस्त व्यस्त होना, न जाने कितनी ही सारी चीज़ें झलक से जुड़ी हुई उसके जहन में घूमने लगी थीं। झलक का पहला बर्थडे, उसका ड्रिंक कर लेना और फिर लगातार उल्टियां करना, सिद्धार्थ का परेशान होना, ये सारी बातें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी थीं। और जिस तरह से झलक उसके लिए खाना पकाया करती थी, रोज़ प्यार से उसके लिए खाना बनाती थी, ये सारी चीज़ें उसे ऐसा महसूस करवा रही थी मानो सब कुछ एक बार फिर से ताज़ा हो गया हो। फिलहाल ज्यादा सोचते सोचते उसके कानों में एक बार फिर सिद्धार्थ की कही हुई सारी बातें गूंजने लगी। उसे याद आने लगा कि किस तरह भरी महफिल में उसे नाजायज कहा गया था। ये सारी बातें उसके दिल दिमाग में पूरी तरह से फिक्स हो चुकी थी। गुस्से में उसने शराब की बोतल उठाकर जमीन पर पटक दी और चिल्लाते हुए बोला, नहीं, एक नाजायज रिश्ते वाली लड़की के लिए मैं और नहीं सोच सकता। वैसे भी अच्छा ही हुआ कि उसकी मौत हो गई। वो इस दुनिया में जीने के लायक थी ही नहीं, और ये सजा भी उसके लिए बहुत कम थी, क्योंकि अगर वो इस दुनिया में रहती तो ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पूरी तरह से दहाड़ रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठ रही थी, क्योंकि शुरू से ही सिद्धार्थ के लिए उसकी माँ, इज्जत, मान मर्यादा सबसे ज्यादा अहम थी। इतना ही नहीं, आज तक जो भी उसके सामने आया और जिसने भी उस पर उंगली उठाने की कोशिश की, सिद्धार्थ खुराना ने बड़ी बेरहमी से उसका अंजाम तय किया था। फिलहाल नशे में धुत सिद्धार्थ खुराना जमीन पर पड़ा पड़ा कब गहरी नींद में चला गया उसे खुद भी एहसास नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आदित्य राणा गुस्से में अपने कमरे में लगातार टहल रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह उसी के क्लब में कोई लड़की उस पर इस कदर हाथ उठा देगी। उसका गुस्सा इस वक्त चरम पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो उस लड़की को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आखिर एक मामूली सी लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि भरी महफिल में उसी के लोगों के सामने उस पर हाथ उठा दे। उसने तुरंत कबीर को फोन किया और कहा, फटाफट उसके बारे में पूरी डिटेल्स निकालो, वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है। कबीर ने बात संभालने की कोशिश की और कहा कि रात को शांति से गुजर जाने देना चाहिए। लेकिन इस वक्त आदित्य राणा पर गुस्सा पूरी तरह से सवार था। जिस तरह से झलक ने उसके बॉडीगार्ड्स की हालत खराब कर दी थी, वो बात उसे और भी ज्यादा हैरान कर रही थी, क्योंकि उसने आज से पहले अपनी जिंदगी में इतनी मजबूत लड़की नहीं देखी थी। इन सभी हसीन हादसों के बाद एक खूबसूरत सुबह हो चुकी थी। हल्की सी प्यारी धूप खिड़की से अंदर आती हुई झलक के चेहरे पर पड़ी और उसे जगा गई। धूप की किरणें जैसे ही उसके चेहरे को छूने लगी, अपने आप उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई।
उसे ऐसा लग रहा था मानो आदित्य राणा पर हाथ उठाकर उसने अपने अंदर की थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल दी हो। उसे ये फीलिंग आ रही थी जैसे उसने सिद्धार्थ पर हाथ उठा दिया हो। हालांकि सिद्धार्थ के साथ वो क्या करने वाली थी, इसका उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। वो अपने मन में सिद्धार्थ को याद करके उसे और ज़्यादा अहमियत नहीं देना चाहती थी। फिलहाल वो फटाफट उठी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, उसकी नज़र सामने बैठी अनामिका पर पड़ी। अनामिका बिल्कुल उसके सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही झपकियाँ ले रही थी। ये दृश्य देखकर झलक की आँखें हैरानी से फैल गई। वो सोचने लगी, ये पूरी रात ऐसे ही बैठकर सोती रही या किसी काम से आई थी? आखिर यहाँ बैठकर क्या कर रही है?